Wars had been fought with Pakistan and China while Jawaharlal Nehru was Prime Minister. In the days that followed, there were to be more external wars and intensified internal conflicts, floods and drought, famine and pestilence, economic malaise and political turmoil. But the nation survived it all and perhaps emerged the stronger for them. Its progress on several fronts, agricultural, industrial, economic, and cultural, impressive, thanks to dedicated leadership by Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, Morarji Desai, and other stalwarts. A high watermark was the help India rendered to the people of East Pakistan in their quest for liberty and freedom. Out of the 1971 war, there emerged a third nation in the subcontinent, Bangladesh, under the charismatic leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. India took another momentous step and entered the world of modern scientific achievement when it exploded an atomic device in Pokharan, Rajasthan in 1974. It was an explosion that showed to the world India's talent and capability to survive in the modern age. But India never forgot the lessons that Gandhiji had taught of peaceful coexistence and non-violence. Ideals which Jawaharlal Nehru had emphasized in his policy of non-alignment when he led India into the Committee of Nations. "What we have created," said Indira Gandhi, "will be for peaceful purposes only." In the youth of India, Indira Gandhi saw the future, the opportunity to build a new nation based on science and technology, a nation in which there would be concern for the environment and for the dignity of labor. Talking to students in Shimla, she exhorted them.
"जो भी कार्यक्रम हमने आरंभ किए हैं वो कार्यक्रम आप लोगों को पूरे करने हैं, आपको चलाने हैं, आपको आगे बढ़ाने हैं। हम कुछ मार्गदर्शन मतलब रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता बनाना और उस रास्ते पर चलना ये आप सबकी जिम्मेदारी है, आपका काम है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप समझें कि हमने कैसा रास्ता बनाया और हम समझें कि आप उस रास्ते को कैसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने बहुत सी गलतियां की, शायद इसलिए कि एक बहुत नया काम था एक इतना बड़े देश को आज़ादी के रास्ते पर चलाना और इतने बड़ी बड़ी कठिनाइयां उस समय आईं। तो शायद जो जनता को और अपने उस समय के बच्चों को आज़ादी के लड़ाई के बारे में बताना चाहिए था वो हमने पूरी कहानी नहीं बताई। और बहुत से इस समय के बालक हैं, युवक हैं, जो पूरी तौर से उस सुंदर कहानी को नहीं पहचानते। आजकल की जो युवा पीढ़ी है उस आज़ादी की लड़ाई को उसका निजी अनुभव तो उनको नहीं है, ये कोई हो ही नहीं सकती क्योंकि उस वक्त वो पैदा ही नहीं हुए थे या बहुत छोटे हुए थे। लेकिन आगे का कैसे हिंदुस्तान बनाएंगे उसके लिए ये पहले की भी कुछ बातें जाननी ज़रूरी होती हैं। कई दफ़े जब मैं कहीं जाती हूँ ये कहा जाता है कि नई रोशनी आई और ये सब, अब ये सब बातें ज़रा पुरानी हो गई, क्योंकि आज़ादी में और ग़ुलामी में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क है कि जब ग़ुलाम होते हैं तो दूसरे के हाथों में होते हैं और आज़ाद होते हैं तो अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। अगर हम फिर वो आज़ादी किसी के हाथों में दे दें तो हमारी पूरी आज़ादी नहीं हुई। किसी के हाथों में देने के माने ये नहीं है कि किसी बाहर के देश के हाथों में दें, ये भी है कि अपने देश में भी अपनी जिम्मेदारी हम छोड़ दें। सब लोग समझने लगे हैं कि उनके हक क्या हैं। कहीं भी हम जाते हैं तो अक्सर एक मांगों की लिस्ट फेरिस्त मिल जाती है हमको कि इस प्रांत के लिए या इस शहर या इस ज़िले के लिए क्या क्या चाहिए, वो सब लोग कहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि वो अपने ज़िले या अपने प्रांत के लिए क्या करेंगे, और वो उतना ही ज़रूरी है, ख़ास तौर से जो युवा पीढ़ी है। आशाएं तो देश को अपनी युवा पीढ़ी से होती हैं और वो उन आशाओं को अगर पूरा नहीं कर सके तो एक नेता, 10 नेता, 40 नेता भी कुछ करें तो देश में परिवर्तन आने वाला नहीं। वो तो युवा पीढ़ी किस दिशा में जाए उससे ही देश का भविष्य हमको मालूम होगा कि कैसे बनेगा। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथों में है और ये हमारा सौभाग्य है हमारे देश का कि हमारी युवा पीढ़ी कभी कभी गलती कर जाती हैं, कभी कभी ये जलाने में और इस चीज़ में बहुत थोड़े से लोग पढ़ते हैं, लेकिन अधिकतर का स्तर बहुत ऊंचा है।